अब यहाँ से आगे जो आयत शुरू ना, इसका ताल्लुक आप निकाह और तलाक के साथ जोड़ेंगे। और शिर्क करने वाली औरतों से, यहाँ तक कि वो ईमान ना लाएं, तुम निकाह ना करो। ईमानदार लौंडी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बेहतर है, वो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो। और न शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक वो ईमान ना लाएं। ईमानदार गुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है, वो मुशरिक तुम्हें बुर अच्छा लगे। ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ, और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। रिश्ते करते वक्त दीन को प्रायोरिटाइज कीजिए। बेटे और बेटियों दोनों के मामले में इस आयत से इस वक्त आपका मेरा यही अमल का नुक्ता है। यस सलूना का अनिल महीद, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो और जब तक कि वो पाक ना हो जाएं इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो। और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम इससे मिलने वाले हो। और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इतना निजी मामला दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में क्यों है? ये एक सवाल उठता है। इसलिए कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। शोहर बीवी के ताल्लुक पे एक खानदान कायम होता है, खानदान से सोसाइटी डिवेलप होती है, फिर मुआशरा बनता है। घरों में सुकून नहीं होगा तो दिलों में सुकून नहीं होगा तो बाहर कहाँ होगा। अल्लाह ने इस्लाम के अंदर औरत मर्द को इतना खूबसूरत रिश्ता दे दिया कि जिसके बाद होम स्वीट होम का एक बेहतरीन नज़रिया समझ आता है। यहाँ आप देखिए कि औरतों को खेतियाँ कहा गया, बस खवातीन इस पर नाराज़ होती हैं। हालांकि खेती अच्छी चीज़ है कि बुरी है? फसल उगती है, उसको देखकर किसान खुश होता है, किसान को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता है। इसके अलावा वेस्ट ने क्या किया या मीडिया ने क्या किया? औरत को चांद कह दिया, जो मर्जी देखे चांद को, फूल भंवरा इधर उधर जाके उस फूल का रस नोच ले। तो फिल्मों ने औरत को एक कमोडिटी बना दिया, सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट बना दिया। इस्लाम मर्दों को कवाम बना रहा है इन आयात की रोशनी में। और इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने औरतों को उनके पूरे हकूक भी दिए। और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का इस तरह निशाना ना बनाओ कि भलाई और परहेजकारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो। और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तदब्बुर करते हैं इन आयात में। सबसे पहले अमल की आयतें, यतीम का तस्करा हुआ, किसी भी फैमिली के या अपने दोस्तों और साथियों में मौजूद यतीम बच्चे या बच्ची के सर पे हाथ रखिए और अगर कर सकते हैं तो उनकी किफालत की कोशिश कीजिए। इसी तरह अल्लाह हर माशरे में खैर और शर के दाई आजमाइश के लिए पैदा करता है, यानी कुछ खैर की दावतें दे रहे होते हैं और कुछ खैर से रोक रहे होते हैं। ये दोनों आजमाइश होते हैं, खैर वाले की दावत पे आते हो कि नहीं और शर वाले की बात पे तुम रिजिस्ट करके उस शर का कलाकमा करते हो कि नहीं। आप में अपनी अकल और समझ से देखें हम क्या फैला रहे हैं। अपना जायजा लिया करें दिन रात, मेरी जात से खैर फैल रही है कि शर, लोग नेकी से रुक रहे हैं कि नेकी कर रहे हैं। इसी तरह हर नमाज के लिए नया वजू कीजिए, चाहे पहले से बावजू हो, क्योंकि एक तो गुनाह झड़ते हैं वजू से, दूसरा बंदा स्पिरिचुअली स्ट्रांग भी होता है। किसी को अगर इस वक्त भी नींद आ रही हो तो उठ के वजू कर सकता है ताकि उसका नींद का खुमार जो है वो दूर हो जाए। फिर कुरान पाक से रहनुमाई क्या है? लोगों के हकूक और फराइज की हिफाजत करना, ये मुत्तकी की अलामत है। अल्लाह से डरने वाला कभी इंसानों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। मोमिन मर्द को अल्लाह की वसीयत है कि अपनी दीनदार मोमिना बीवी से मोहब्बत करे। इस्लाम तहारत और पाकिजगी का नाम है, इसलिए औरत से बीमारी के दिनों में मर्द को रोक दिया। गौर व फिक्र की बात है, मुशरिक लोग अपने अमाल और अफाल से जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं, इसलिए इनसे घुलने मिलने में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कसरत से कसम खाना नापसंदीदा है, कसम खा कर नेकी के कामों से नहीं रुकना। तौबा कर कर के फिर बार बार गुनाह करें तो फिर भी तौबा करते रहिए। अल्लाह ने नाउमीदी का दरवाज़ा बंद और उम्मीद का दरवाज़ा खोल दिया है। चलिए अब तलाक के मसाइल सुनते हैं। इसमें इंशाल्लाह आपको अभी एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगी। कई लोग हैं जो कुरान पढ़कर भी तलाक का तरीका नहीं सीख सके, और अफसोस की बात बताऊं कि आज ना हमें निकाह का तरीका आता है ना तलाक का। इस पे हमारा एक लेक्चर भी है, अभी उसका रिकमेंड कर देती हूँ, लिंक भी भिजवा देंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, तो आप वो सुनिए। निकाह से तलाक तक हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा इशू हमारे पास क्वेश्चंस की सूरत में होता है, तो उस एक लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तरीका दिया गया है कैसे। I-225 से ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी इन कस्मों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो। हाँ, इसकी पकड़ इस चीज पर है जो तुम्हारे दिलों का फेल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुरदबार है। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक ना रखने की कस्में खाएं, इनके लिए 4 माह की मुद्दत है, फिर अगर वो लौट आए तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर तलाक का कसद कर ही लें तो अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। इसको लिखे विमेन राइट्स, एक औरत के हकूक पे अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें, इन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ने इनके रहम में जो पैदा किया हो उसे छुपाएं। अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान हो, इनके खामद इस मुद्दत में इन्हें लौटा देने के पूरे हकदार हैं। अगर इनका इरादा इस्लाह का हो, और औरतों के भी वैसे ही हक है जैसे इन पर मर्दों के, अच्छाई के साथ। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है, और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। ये जुमला लिखिए, औरतों के हकूक भी वैसे ही हैं जैसे मर्दों के। आयत का ये हिस्सा पढ़ के हजरत इब्ने अब्बास अपने आप को संवारते, साफ सुथरा करते, खुशबू लगाते, अपनी बीवी के पास जाते हुए कहते थे, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए बनाव सिंगार करे, उसका भी तो ये दिल चाहता होगा। तो आज फिर मर्दों के लिए इसमें कितना बड़ा सबक है। अब तलाक का तरीका, अत्तलाक मर्रतान, ये तलाक के 2 मर्तबा हैं, या तो फिर अच्छाई से रोकना या उम्दगी से छोड़ देना है, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने इन्हें जो कुछ दिया है इसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम न रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे, तो औरत रहाई पाने के लिए कुछ दे डाले, खुला की तरफ इशारा, इसमें दोनों पर गुनाह नहीं, ये अल्लाह की हुदूद हैं, खबरदार इनसे आगे नहीं बढ़ना, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज कर जाएं वो जालिम हैं। ये है जी तलाक। देखिए, असल में तलाके 2 हैं, उसको तलाके रजई कहते हैं। रुजू का हक 2 बार की तलाक के बाद तक रहता है, जो ही तीसरी तलाक हुई मुकम्मल जुदाई हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में तलाक ज़्यादा नापसंदीदा है। इस रिवायत को मुख्तलिफ सनदों में देखें तो कहीं ज़ोफ़ पे है, लेकिन बड़ी मारूफ रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत है 2177। तलाक खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, मजाक नहीं है, फिल्मों से तलाक लेना देना ना सीखे। बात पे गुस्सा आया, खड़े होके आवाज़ दी, तलाक तलाक तलाक, घर से बाहर निकाल दिया, बिजली चमक रही, औरत बाहर खड़ी है, ये तलाक नहीं है। एक जुमला लिख लीजिए, तलाक सोचा समझा फैसला। एटलीस्ट इसके लिए 1 महीना पहले से प्लान होता है, औरत के पीरियड से पाक होने का इंतज़ार किया जाएगा, पूरा महीना उससे कोई सोहबत नहीं होगी, जब वो पाक होके फिर उसके बाद ये मामला होगा। दूसरी बात है, तलाक एक इमरजेंसी डोर है, हर वक्त वो नहीं खोला जाता, वो खास हालात में खुलता है। फ्लो चार्ट है आपके सामने, इसमें आप देखिए तलाक हसना की बात है, पहली और दूसरी तलाक जिसको रजई तलाक कहते हैं। रुजू का हक है से तोहर, है से तोहर, है से तोहर, 3 दफ़ा, जो ही तोहर ख़त्म इद्दत ख़त्म। इद्दत 3 सकरू है, 3 हैज, औरत शौहर के घर में रहेगी, तो ये इद्दत के दौरान की बातें हैं, हमारे यहाँ तो पहले मैके आ जाती है औरत। शौहर के लिए जेबो जीनत का एहतमाम करेगी, हमल नहीं छुपाएगी, कोई शख्स निकाह का पैगाम नहीं भिजवा सकता। फिर फइमसाकुम बिमारूफ, आदाब है, तंग करने के लिए ना रोका जाए कि जरा इसको भी और मजा चखा ले, ज्यादती करने के लिए नहीं रोकेंगे, आइंदा बेहतर तरीके से रहने का इरादा होगा फिर रुजू होगा, और फिर तस्रीहुम बेहसान, ये है छोड़ देना। इसके आदाब क्या हैं कि जो माल और तहाइफ बीवी को दे चुके हैं वो वापस ना लिए जाएं। औरत मर्द का घर छोड़ देगी, निकाह के लिए आजाद है, साबिका शोहर से निकाह खत्म, साबिका शोहर से नई शराइत पर नया निकाह हो सकता है। कितनों को ये पता है, एक या दो तलाकों के बाद जब तलाक हो जाती है, जिंदगी में कभी भी दोबारा निकाह हो सकता है, इसी को तलाक़े हसना कहते हैं। फिर इसी तरह तलाक़े हसना की तीसरी तलाक जो बायना होती है, इसमें रुजू का हक नहीं रहता। इद्दत के दौरान जब तीन क्रूए औरत शौहर का घर छोड़ देगी, दौरान इद्दत कोई भी शख्स इशारतन निकाह का पैगाम भेज सकता है, निकाह ख़त्म, औरत निकाह के लिए आज़ाद है। साबिका शौहर से निकाह ख़त्म, किसी भी शख्स से शादी हो सकती है। ये जो लफ्ज़ हलाला है ना, इस्लाम का नाम नहीं है ये। पिछले शौहर से निकाह सिर्फ इस सूरत में हो सकता है जब औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह करे और बेवा हो जाए, या फिर तलाक हो जाए बगैर किसी प्लान के। इरादतन ऐसा लफ्ज़ यानी हलाला का करना कराना ये नाजायज़ है, और इसको कराए का सांड कहा गया है। और आज तो अल्लाह रहम करे इसके कितने बेहुदा किस्म के तरीके आम हो चुके हैं। अल्लाह हमें अपनी इसलाह करने वाला बना दे। फिर आगे आयत नंबर 230 से, फिर अगर इसको एक तीसरी बार तलाक दे दे तो अब इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत इसके सिवा दूसरे से निकाह ना करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि ये जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। नोट किया आपने, बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी। क्या पता चला अमल की बातें इन आयात में? अल्लाह की ताजीम करते हुए कसम मत खाइए, यानी अल्लाह के नाम खाकर नेकी से नहीं रुकना। खवातीन के चूंकि हकूक हैं तो खवातीन को तोहफा दीजिए, जो भी दे सके, कोई बीवी को दे दे, कोई माँ को दे दे, कोई बहन को दे दे। लोगों को औरतों के हकूक की पामाली की बुराई से आगाह कीजिए। कुरान से रहनुमाई क्या है? इद्दत की हिकमत बाहमी मोहब्बत के जुदा हो जाने से पहले जायजा ले लें। यानी इद्दत एक वेटिंग पीरियड है कि ये घर बच जाए, घर बच जाए, साथ रहेंगे ताकि किसी वक्त भी एक दूसरे को इंसान कबूल कर ले। मियाँ बीवी के हकूक और फराइज की तकमील के बगैर घर अच्छे तरीके से नहीं चल सकते, इसलिए अपने घरों में सुकून रखिए। बीवी से ताल्लुक ना रखने की कसम की मुद्दत सिर्फ 4 माह है, इसके बाद बीवी को पूरा इख्तियार है कि वो उससे खुला ले ले। जब इस्लाम आए ना तो उस वक्त तलाक की कोई लिमिट ही नहीं थी। सौ सौ तलाकें देते, औरत को तलाक देते, फिर रखते, फिर रखते, अल्लाह ने कहा खत्म, अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं रोक सकते। गौर की बातें नोट करते हैं। इंसान अपने कॉल ऑफ फेल पर जवाबदेह है, जिसके साथ दिल, अमल और इरादा शामिल हो। इसलिए किसी के साथ भी ज्यादती करते वक्त सोच लीजिए। अल्लाह ताला इंसान को सजा देने में जल्दी नहीं करता, क्यों? तौबा करके माफी मांग लें। औरतों के भी वैसे ही हकूक है जैसे मर्दों के, इसलिए शौहरों को भी अपनी बीवियों के लिए जेबो जीनत करनी चाहिए। मियाँ बीवी के हकूक का पैमाना तय करने के लिए आम जो मारूफ तरीका है उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। यानी फिल्मों, ड्रामों, स्टेज शोज से नहीं, डे टू डे रियल लाइफ से औरत और मर्द के ताल्लुक को समझा जाए। इसी तरह तलाक रजाई सिर्फ 2 बार ही दी जा सकती है। ये इंशाल्लाह आप पूरा वो लेक्चर सुन लें, आपको पूरा ये फ्लो चार्ट भी समझ आ जाएगा और बहुत से सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इंसान के लिए मुनासिब है कि वो किसी मामले को निभाने की ताकत पाए तो कदम उठाए, वरना पीछे रहे। जो कर नहीं सकते उसको शुरू ना कीजिए। अब आगे इद्दत के कुछ मसाइल हैं 231 से। वइज़ा तल्लक्तुमुन निसा फबलग़ना अजलहुन, जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत खत्म करने पर आए तो अब इन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो, और इन्हें तकलीफ पहुंचाने की गरज से जुल्म और ज्यादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ, और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताब व हिकमत इसने नाजिल फरमाई जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है इसे भी, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। आप देखिए औरत मर्द के मामलात में बार बार अल्लाह का डर आ रहा है। जब तक अल्लाह से नहीं डरेगा कोई शौहर बीवी के हक नहीं देगा, जब तक अल्लाह से नहीं डरेगी कोई बीवी अपने शौहर का हक नहीं देगी। तो इंसानी मामलात का तकवा ज़्यादा मुश्किल है इबादात वाले तकवे से। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो इन्हें इनके खाविंदों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हों। ये नसीहत इन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन और ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है, अल्लाह ताला जानते और तुम नहीं जानते। अब कभी कभी तलाक होती है तो बच्चा भी होता है, यानी बेबी है, फीडिंग किड है, उसका क्या होगा? वल वालिदात युर्देना औलादहुन, माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं इनके जिम्मे इनका रोटी कपड़ा है जो दस्तूर के मुताबिक हो। हर शख्स इतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इस बच्चे की वजह से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई जरर ना पहुँचाया जाए, यानी इद्दत के दौरान बच्चे को एक डिस्प्यूट मैटर ना बनाओ, छीना झपटी ना करो, वो कह रहा है मुझे दे दो, वो कह रही है मुझे दे दो, या दे रहे हो तो पैसे नहीं दे रहे। वारिस पर भी इस जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम इनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वो इनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहे। नोट किया आपने, ऑलमोस्ट हर आयत के एंड पे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो ये बात आ रही है। तदब्बुर की बात देखेंगे, अमल के नुक्ते पहले क्या हैं इसमें? निकाह और तलाक से मुतल्लिक पूरी तरह काम आज सीखने हैं। नियत करते हैं, हर शादीशुदा कपल को ये मसाइल मालूम होने चाहिए। सुबह शाम के औकात में दुआओं का एहतमाम करना है। मियाँ बीवी के झगड़े में सुलह और सफाई और तलाक की सूरत में रजू की राहें हमवार करनी है। नेक दिल मर्द बीवी से खैर का बर्ताव करता है चाहे इसे पसंद करे या ना करे, यानी कुरान ये रहनुमाई देता है हमें। गुस्से और इख्तलाफ में भी शरीयत के अहकाम का मजाक ना उड़ाएं। नसीहत कबूल करें अगरचे नसीहत करने वाला आपसे कम दर्जे का क्यों ना हो। गौर की चंद बातें, अल्लाह तआला की आयात को गैर संजीदा लेना और इन पर अमल ना करना आयात का मजाक बनाना। औरत बजाते खुद निकाह का इख्तियार नहीं रखती, इसकी तरफ से वली का होना जरूरी है। मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात दोबारा निकाह से रोकना फसाद का जरिया बनता है। कभी बाप भाई अड़े आ जाते हैं, हम नहीं भेजेंगे बेटी को वापस, हम नहीं भेजेंगे बहन को वापस। नहीं, मियाँ बीवी को खुद डिसाइड करने दीजिए, बीच में से निकल जाइए, दोनों खुद डिसाइड करेंगे। अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले काम में इलाही को मानने में जल्दी करते हैं। कल तक नहीं पता था, पता चल गया, बस अल्लाह से कह दे इंसान के अल्लाह आज के बाद मैं मानूंगा। अब पारा एंड की तरफ आ रहा है, 234 से। वल्लज़ीन युतवफ्फौन मिनकुम वयज़रून अज़्वाजा, तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें, फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन इन औरतों से निकाह की बात करो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम जरूर इनसे जिक्र करोगे लेकिन तुम इनसे पोशीदा वादे ना करो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अक़्दे निकाह जब तक की इद्दत खत्म ना हो जाए पुख्ता ना करो। जान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म रखता है, तुम इससे खौफ खाते रहा करो। और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हिल्म वाला है। अल्लाह ताला की सिफात क्या बता रही हैं? कि हम भी इंसानी मामलात में एक दूसरे के साथ नरमी का मामला करें। अक्सर ऐसे इश्यूज में लोग ज्यादती कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर मेहर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, इन्हें कुछ ना कुछ फायदा दो। खुशहाल अपने अंदाज से और तंगदस्त अपनी ताकत के मुताबिक दस्तूर के मुताबिक अच्छा फायदा दे, भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने इन्हें हाथ लगाया हो और तुमने इनका मेहर भी मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्रर मेहर का आधा हिस्सा दे दो। ये और बात है कि वो खुद माफ कर दें या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। तुम्हारा माफ कर देना तकवा से बहुत नजदीक है। और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। मुस्तकिल आयतों में अल्लाह के देखने की बात है, तो लोगों से तो हम बच जाएंगे। असल फिक्र ये कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए क्या मामला करता है। चलिए अमल की बातें नोट करते हैं। तन्हाई में हो या महफिल में, सिर्फ खैर खैर और खैर के बारे में सोचिए। तन्हाई में छुपकर किए गए गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगे। जिसने आपसे ज्यादती की हो, अल्लाह से दिल के तकवा हासिल होने की उम्मीद पर इसे माफ कर दें। यहाँ बैठ के सबको माफ कर दें, अल्लाह आपको माफ कर देगा। कुरान पाक से रहनुमाई, वसवसे और बुरे ख्यालात गुनाहों की शुरुआत है। इधर से एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो बाद में कई दफा घर तुड़वाने तक का जरिया बनता है। लोगों के साथ फजल और एहसान का मामला करें। इस्लाम ने दूसरों के साथ एहसान और भलाई करने की जो वसीयत की है उसको याद रखिए। फिर चंद बातें गौर की हैं इद्दत से मुतल्लिक। बेवा की मुद्दत इद्दत में आराइश से मना किया गया, क्योंकि इससे शादी की रغبत पैदा होती है। यानी ये काम औरत को आराइश करनी चाहिए, लेकिन बेवा को हर तरह की चीज से जिससे आराइश हो रुकना चाहिए। तलाक के वक्त इस एहसान को नहीं भूलना चाहिए जो तलाक से पहले मियाँ बीवी में मौजूद था। अच्छे दिन तो गुजारे होते हैं ना, उनको याद कर लें। मुतल्लिका जिसे खलबत से पहले तलाक दी गई हो, अल्लाह कहते हैं उसको कुछ माल दे दो। यानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ और तलाक हो गई, सिर्फ निकाह हुआ और तलाक हो गई, तो कुछ मुता दे दो, कुछ कंपनसेट कर दो। बेबा की इद्दत 4 महीने 10 दिन है। इतनी इद्दत में बच्चा माँ के पेट में हरकत शुरू कर देता है, उसमें रूह फूक जाती है, तो फिर हमल जाहिर हो जाता है। अल्लाह ने क्या क्या बातें की। कभी आप में से जिसने कभी तर्जमा ना सुना हो, ये सोचा था कुरान में ऐसी बातें भी हैं? मुझे तो पढ़ के ऐसे लग रहा है कि ये हम कोई मैनुअल ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। दिल में आता था कुरान में कोई सुबहान अल्लाह होगा, अल्लाह अकबर होगा, तस्बीहात होंगी, वजीफे होंगे। कुरान तो सारा आपकी मेरी डे टू डे लाइफ में है। कितना घरेलू कुरान है हमारा, अल्लाह अकबर कबीरा। चलिए अब एक वाक्य एंड पे आने लगा है और इसी पे भी पारा पूरा होगा। 238 से, हाफिज अल सलावाती व सलातिल वुस्ता व कूमु लिल्लाहि कानितीन। नमाजों की हिफाजत करो। ये क्या हुआ, एकदम नमाज की बात? इसलिए कि तलाक और लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं तो नमाजें जाती हैं, दोनों तरफ से पार्टियां बैठ रही, ये हो रहा वो हो रहा, और नमाजें जाया हो रही हैं। बिलखसूस दरमियान वाली नमाज की, यानी सलातुल असर। और अल्लाह ताला के लिए इबादत खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही। हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह किसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। क्या पता चला, जैसे हालात हों उसके मुताबिक नेकी कर लीजिए। हमेशा आइडियल हालात नहीं होते, फिर जो कर सको वो कर लो। जो लोग तुम में से फौत हो जाए, ये बेवा की इद्दत की आयत है, नंबर नोट कर लें। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि इनकी बीवियां साल भर तक फायदा उठाएं, इन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं। जो वो अपने लिए अच्छाई से करें, अल्लाह गालिब और हकीम है। अब यहाँ क्या हुआ, इद्दत 1 साल की, तो लिख लें ये मनसूख आयत है। पहले 1 साल की इद्दत थी जिसको बाद में अल्लाह ताला ने 4 माह 10 दिन पे कर दिया, और वो आयत गुजर चुकी है ऊपर। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम ने दिन ब दिन अहकामात को आसान किया। तलाक वालियों को अच्छी तरह फायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। अल्लाह ताला इस तरह अपनी आयतें तुम पर जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। तो यहाँ पे तलाक का मौजू पूरा हुआ। एक औरत होने के नाते जरा अपनी फीलिंग्स लीजिए। कभी कभी औरतों के पीछे कोई नहीं होता ना, माँ बाप फौत हो गए, भाई बहन पास नहीं है, हाय कौन हमारी बात करे, हम किससे कहें, अल्लाह से कहिए। तो अल्लाह ताला ने औरतों को हकूक दिए। अब यहाँ से अगले 2 रुकू जो आखिरी है, इसमें एक ही वाक्य है, जिहाद की रग़बत। मदीना में अब जिहाद शुरू होना था। अल्लाह ने माजी की कौमों के किस्से सुनाकर उम्मत मुस्लिमा को बताया कि अब मदीना में जंगें होंगी। तो आइए जरा सुनते हैं। अलम तरा इल्लज़ीना, क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे? किसको कहा जा रहा है? मंजल्लजी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, बस अल्लाह ताला इसे बहुत बड़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करते और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। ऐसी आयतों पे दो रद्दे अमल आए थे। कुछ साहब अपना सब कुछ लेके निकल गए, हम देंगे कर्ज, और एक यहूद का गिरोह था जिसने अल्लाह ताला पे बातें की, जिसका जिक्र आगे आएगा। हम क्या गौर करें अमल क्या है इन आयतों पे? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हिदायत की नेमत से नवाजा है, कुरान की दौलत दी है। थोड़ी बहुत मुश्किल आ जाए तो भी शुक्र कीजिए, आसानी से कुछ नहीं मिलता। अपनी नमाजों की खास तौर पर असर की नमाज की हिफाजत करनी है, अव्वल वक्त पे पढ़ना है। अपने रब को कर्ज़ हसना दीजिए, कल क़यामत में पढ़ा चढ़ा कर देगा। और कर्ज़ हसना क्या है? अल्लाह के दीन को प्रमोट करना, अल्लाह के रास्ते के जिहाद और अल्लाह ताला के प्लान्स को पूरा करने के लिए अल्लाह को देना। रहनुमाई क्या है कि तलाक की आयतों के दरमियान नमाज का जिक्र क्या बता रहा है? किसी घराने को पायदार और पुरसकून रखना है तो नमाजें पढ़िए। नमाजों में अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ना घर के अंदर सुकून लाता है। असबाब इख्तियार करने के साथ फिर भी मामला सही नहीं हुआ तो अल्लाह के फैसलों और तकदीर के फैसलों को कबूल कीजिए। गौर व फिक्र, नमाजों की पाबंदी दुनिया और आखिरत को संवारने का जरिया है। कर्ज़ हसन हलाल माल से होना चाहिए। खर्च करने वाला न एहसान जतलाए न तकलीफ दे। खौफ की हालत में चलते हुए या सवार होकर नमाज का हुक्म देकर बताया, हर हाल में अल्लाह को याद रखो। और नमाज वुस्ता कौन सी है बता क्यों नहीं दिया? ताकि रग़बत बाकी रहे। तजस्सुस भी होता है ना, हर नमाज को ही अहम नमाज समझिए। और उसके बाद फिर 246 है, अलम तरैल मलाई मिम बनी इसराइल मिम बादी मूसा, क्या आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए और बच्चों से दूर कर दिए गए। फिर जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे भला इसकी हुकूमत हम पर कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाह के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। देखिए दिल में कुछ और था ना, जुबान से कुछ और। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने इसी को तुम पर बरगजीदा किया, यानी अल्लाह ने इसी को तुम पर बुजुर्गी दी और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी अता फरमाई। ये नोट कीजिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ में पर्सनैलिटी अच्छी हो और इल्म अच्छा हो। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। इनके नबी ने इन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की जाहरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमाई है, यानी तुम्हारा दिल जम जाएगा, सुबाते कल्ब होगा, और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है, फरिश्ते इसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली हुई दलील है अगर तुम ईमान लाओ। क्या पता चला इन आयतों पे? जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सामना हो जाए तो साबित कदम रहे। अल्लाह से पूरी लगन से उसके चुने हुए बंदों में शामिल होने की दुआ करें, अपने लिए भी अपनी नस्लों के लिए भी। और अल्लाह ताला से कसरत से इल्म में इजाफे की दुआ भी कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करने की दुआ कीजिए। बस तदम्फिल जिस्मी वल इल्म, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं। रहनुमाई क्या है इसमें कुरान से? मसाइब में साबित कदम रहना मोमिनों की सिफत है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से कुछ उलमा, फुकरा और ताजिरों को चुन लेता है, उलमा से इल्म दिलवाता है, फुकरा इल्म की मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं और ताजिर उन पे खर्च करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें इन तीनों में ही कर दे, और किसी से हसद नहीं करना। नफ्स को खुश करने के लिए किसी मनसब की ख्वाहिश मत कीजिए, क्योंकि जब मनसब मिलते हैं ना तो जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो जिम्मेदारान में शामिल होना छोटी बात नहीं है। गौर की बातें, तालूत और जालूत के किस्से में इबरत है। अल्लाह की राह में लड़ने वाला वो है जो कलमे बुलंद करने के लिए लड़ता है, जान माल पैसे के लिए नहीं। ऐश परस कौम को जंग का सामना करना पड़े तो बुज़दिल हो जाते हैं। आज उम्मते मुस्लिमा से अक्सरियत इसी की एक किस्म की तस्वीर बनी हुई है। रूहानी फजीलतें जिस्मानी फजीलतों से बरतर होती हैं। रंग काला भी हो कोई बात नहीं, बिलाल को अल्लाह ने काबे की छत पर खड़ा कर दिया, और अबू लहब शोलों का बाप था लेकिन कैसे रुसवा हुआ। तो जिस्मानी शक्लो सूरत से ज्यादा मुतासर ना हो। आखिरी आयतें 249 से, फलम्मा फसल तालूत विल जुनूद, जब हजरत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो इसे ना चखे वो मेरा है। हाँ ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद लोगों के बाकी सब ने पी लिया। आज भी दुनिया का पानी पी ही लेते हैं लोग। हजरत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और इसके लश्करों से लड़े। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बाज़ुकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। जब इनका जालूत और इसके लश्करों से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ की, आप भी कीजिए, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे, और कौम कुफार पर हमारी मदद फरमा। पता चला कि जब कोशिशों से कोई चीज़ ना मिले तो दुआओं का सहारा लीजिए। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ, और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलिकत और हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बास लोगों को बास से दफा ना करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजलो करम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की आयात हैं जिन्हें हम हक्कानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। अब आयत का आखिरी टुकड़ा सुनिए और पारे के थीम को जहन में रखिए। बिल यकीन आप रसूलों में से हैं, ये हैं जी सिराज मुनीरा। अल्लाह के नबी को रिसालत की खुशखबरी दी गई है। लोग दुश्मन बने तो बनते रहे, लोग आपको काहिन मजनू दीवाना कहें तो कहते रहे, अल्लाह की ये गवाही कितनी बड़ी है कि इन नकल मिनल मुरसलीन। क्या पता चला, गौर करते हैं। अमल की बात, तालूत के वाक्य में से अहम नुकात निकालने हैं। साबित कदमी की बकसरत दुआएं मांगनी है ताकि मुसीबत के वक्त हक पर जमे रहें। मुसीबत में मुब्तला लोगों को दुआ की नसीहत कीजिए, और रहनुमाई क्या है, अल्लाह ही सब्र की तौफीक देता है, साबित कदमी और अहले कुफर के मुकाबले में मदद करता है। मुसीबत में दुआ अल्लाह के सामने अपनी आजजी का इजहार है, अल्लाह की मदद का अहम सबब बनता है, और आखरत की फिक्र साबित कदमी और अल्लाह की मदद का बायस है। गौर की चंद बातें, बुरे अमाल और नियतों वाली बड़ी फौज दुश्मन की थोड़ी सी तादाद से भी निढाल हो जाती है। दुआ करें अल्लाह हमारे अमाल अच्छे रखे और हमारी नियतों को ठीक रखे, तो बड़े बड़े दुश्मनों पे अल्लाह गालिब करेगा आपको। सब्र और जब्त अल्लाह की माइयत का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह जिनके साथ होता है ना उनको सब्र और कंट्रोल दे देता है। सबसे अफजल दुआ वो है जो बंदों की ज्यादा से ज्यादा हाजतों को समेटने वाली हो, यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। मोमिनों और काफिरों के दरमियान टकराव क़यामत तक के लिए, इसे घबराना नहीं चाहिए। तो ये था पारा नंबर 2, तवील पारा था। दूसरी बात है कि आपने आज पहली दफ़ा एक पारा पूरा किया है, अल्लाह आपसे आसानियों के मामले करें। मतरूक सुन्नत ले लीजिए, हर दिन पारे के एंड पे हम एक ऐसी सुन्नत की बात करेंगे जो आज अमल में नहीं, और वो क्या है, पहचान हो या ना हो हर मुसलमान को सलाम करना। अल्लाह के नबी की रिवायत है बुखारी में, 6236 تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. سلام کرو اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے. غیر ملکوں کی بات نہیں کروں گی کیونکہ اس وقت اپنے ملک میں ہوں. کیا اب ہم مسلمان راہ چلتے پارکس میں, مالز میں, گروسری سٹورز میں, ایئرپورٹس پہ آمنے سامنے آنے والے مسلمانوں کو سلام کرتے؟ نہیں کرتے, صرف ان کو کرتے ہیں جن کو جانتے ہیں. یہ غیر اسلامی ہے. سلام کا تو مطلب ہی بونڈ ہے, آپس میں ایک دوسرے سے تعلق جوڑے. تو آج ایک نیت کیجئے, آپ باہر جاتے ہیں, ملتے ہیں, کوئی سڑک پہ جائیں, السلام علیکم. بس لمبی کہانی نہ کریے, ضرور پوچھئے, کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی. کیونکہ آج ہم آپس میں ہی نہیں مل رہے تو غیروں کو کہاں کریں گے. اس کے برعکس آپ کہتے ہیں غیروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو لے لیا, اور وہ کیسے؟ ہیلو, ہائے ہائے, یہ ان کا کال ہے. چہروں پہ اسمائل اور زبان پہ سلام, انشاءاللہ دلوں کو پتہ کریں گے. آج ہم اخلاق نبوی پہ بات جو کریں گے وہ ایک واقعہ ہے, کیونکہ ہر پارے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا روپ دینا ہے ہم نے, جو کہہ لیجئے کہ یہ الزام ہمارے اوپر سے دور کرا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے. اخلاق کے ذریعے بھی اور تلوار کے ذریعے. جہاں اخلاق کی مار مارنی تھی وہاں اخلاق کی ماری, اور جہاں تلوار کی ضرورت پڑی تلوار کی ماری. نہ یہ دونوں میں کانٹراڈکشن ہے اور نہ یہ ایک دوسرے کے تقابل پہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ حنین کی جنگ میں مشرکین کی فوج کا سردار مالک بن عوف النصری تھا, بنو خوازن سے تعلق رکھنے والا. یہ کمانڈر بنو سقیف کے تعاون سے 25,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کے میدان میں اترا. یہ شخص بلا شبہ بہت بڑا شجاع اور بہادر تھا. اس کا احترام اس درجے تھا کہ اس نے جب یہ فیصلہ سنایا کہ پوری قوم اپنے ساتھ اپنے مال مویشی, عورتیں اور بچے بھی لے کر میدان جنگ میں آئے, تو لوگوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا. اس کے موقف کی مخالفت بھی کی مگر اس کے باوجود یہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا. اس کا موقف تھا کہ ہمارے فوجیوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اسی میدان میں ڈٹے رہنا ہے, راہ فرار اختیار نہیں کرنی, کیونکہ جن کے پاس بھاگ کر جانا ہے وہ تو ہمارے پاس ہیں. اگر اس کی فوجی تنظیم اور ترتیب کو دیکھا جائے تو وہ بڑی کامیاب تھی. یہی وجہ ہے کہ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ بھاگنے لگتے ہیں. حنین کی جنگ ہے, دشمن قوم کا جو لیڈر ہے نا وہ ساتھ ہی عورتوں اور بچوں کو بھی لے آتا ہے. باقیوں نے اعتراض کیا کہ عورتوں اور بچوں کا کیا کام ہے. اس نے کہا نہیں, بیوی بچے ساتھ ہوں گے تو فوجی اچھی طرح لڑیں گے, ان کو گھر جانے کی جلدی نہیں ہوگی. خیر, آگے ترتیب بھی اس نے بہت اچھی دی, ڈسپلن تھا. ادھر مسلمانوں کے بھی ذہنوں میں ذرا سی خوش فہمی آ گئی تھی کہ ولو عادبتکم کثرتکم, سورۃ توبہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ دن یاد کرو جب تمہیں تمہاری کثرت جو تھی بہت لگی. اب کیا ہوا؟ شروع میں مسلمان دب گئے, دشمن ہار گیا. آگے کیا ہوا سنیے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا کہ اللہ کے رسول کی شجاعت اور بہادری کی بدولت بھاگتے ہوئے مسلمان لوٹ آئے اور جم کر لڑائی کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. بنو ثقیف اور بنو حوازن بھاگ اٹھے. ان بھاگنے والوں میں اس فوج کا کمانڈر مالک بن عوف بھی تھا. وہ بھاگ کر طائف میں بنو ثقیف کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. اسی دوران میں اس کے قبیلے بنو حوازن نے اسلام لانے کے بارے میں سوچا اور رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب سنیے, یہ ہے میرے پیارے نبی کا اخلاق. اللہ کے رسول نے ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے. ذرا غور کیجیے, ایک کمانڈر جو میدان جنگ میں بری طرح شکست کھا چکا ہو, اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. مالک بن عوف کی حالت یہ ہے کہ اپنے قبیلے سے الگ بنو ثقیف کے رحم و کرم پہ نہ اس کے پاس مال ہے, نہ متاع ہے, نہ قبیلے کے افراد ہیں. اسے بنو ثقیف سے بھی ڈر ہے کہ وہ اسے حنین کی جنگ میں جو بھی گڑبڑ ہوئی اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر قتل نہ کروا دے. ایک شکست خوردہ کمانڈر جو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں, लोग उससे नफरत कर रहे हैं, इसकी वजह से शिकस्त हुई, मगर एक ऐसी शख्सियत भी है जो इसके लिए खैर ख्वाही का सोच रही है, इसके साथ हमदर्दी और भलाई के जज्बात रखती है, और ये शख्सियत सिराज मनीरा उसवे आलम है। उनके दिल में फिर भी नरमी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मालिक बिन औफ की कौम के अफराद से पूछा, मालिक बिन औफ कहाँ है? उन्होंने बताया, वो ताइफ के कले में है, लोगों से छुपता फिरता है, वो नहायत खौफजदा और अपने मुस्तकबिल से परेशान है। आपने फरमाया, इखबरू मालिकन इन्नहु ऐन अन अतानी मुस्लिमन, मालिक को इत्तला दो कि अगर वो मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाए तो रदत्तु इलैहि अहलुहु व मालुहु, मैं इसके अहलो याल और माल इसे वापस कर दूंगा, और इसे वातैतुहु मियत मिनल इबिल, 100 ऊंट भी दूंगा। अब बताइए, कोई अपनी जान के दुश्मन से ऐसा सलूक कर सकता है? फौज का कमांडर, हाल ही में फतह भी हासिल की, अपने दुश्मन के बारे में ऐसी पॉजिटिव सोच क्यों रखेगा? क्योंकि नकल आला खुलुक नजीम, आपका अखलाक दुश्मनों को सीने से लगाने वाले था। आज हमारा अखलाक है, दुश्मन के सीने पे गोली मारो, मारो जहां जरूरत पड़ेगी मारो, लेकिन बींग अ ह्यूमन, इंसान का दर्द तो पालो। और आपको तो फिर क्या हुआ, मालिक बिन औफ को जब अल्लाह के नबी का पैगाम मिला, ये तो उसके दिल की आवाज थी। जिस मुसीबत और परेशानी से दो चार, तो उसका हल यही था कि फौरन इस्लाम कबूल करे। चुनाचे वो ताइफ से अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होता है और इस्लाम कबूल करता। आपका अखलाक है, कोई शर्त आयत नहीं की, मलामत नहीं की, बुरा भला नहीं कहा, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया, सवाल जवाब नहीं किए, कोई शरारत नहीं रखी। अब बताइए, अल्लाह के नबी का ये उसके साथ जो मामला हुआ, इसने उसके दिल में नबी सल्लम की और इस्लाम की कितनी इज्जत बढ़ा दी होगी। आपने मालिक बिन औफ को ख्वाजन का सरदार मुकर्रर किया और इसको ताइफ को फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी। तो क्या समझ आया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अल्लाह हमें इस पूरे पारे में, हमने अख़लाक़ की इतनी बातें पढ़ी, तो आयते बिर के साथ अगर हम इसको सुन रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि आज उम्मत को भी इसी अख़लाक़ को अपनाने की ज़रूरत है, जो दुश्मनों को दोस्त बनाए। हम आज अपने दोस्तों को दुश्मन बनाए हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।